हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। धृति आश्चर्य से आंखें फैलाए उसे देखती ही रह गई, फिर उसने अपना मुंह बिचका लिया। नहीं चाहिए मुझे अब आपसे कुछ भी, धृति ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। उसका ये रवैया देखकर अर्णव चौंक गया। अरे पर अब क्या हुआ तुम्हें, अब किस पर इतना नाराज हो रही हो, अब तो मैंने तुम्हारी बात भी मान ली। धृति उसे छोड़कर अकेले ही जाने लगी और बेचारा अर्णव उसे मनाते हुए उसके पीछे पीछे आने लगा। अर्णव जैसे ही चुप हुआ धृति एकदम से चलते चलते रुक गई। अर्णव उससे लगभग टकराते टकराते बचा। पल भर को उसके सांसें अटक गई। हड़बड़ी में उसने अपने आगे बढ़ते कदमों को ब्रेक लगाया और गहरी सांस अपने सिकुड़ते फेफड़ों में भरी। क्या करती हो यार, ऐसे अचानक चलते चलते कौन रुकता है, अभी टक्कर हो जाती हमारी। अर्णव के लहजे में कुछ नाराजगी भी झलक रही थी तो कुछ भय और चिंता भी थी। उसके सवाल को नज़रअंदाज करते हुए धृति ने गंभीर निगाहों से उसे देखा और संजीदगी से सवाल किया। आप फ्रस्ट्रेट हो गए ना मुझसे, मैं आपको इरिटेट करती हूँ ना, इसीलिए आप मेरी बात मानकर अपना पीछा छुड़ा रहे हैं मुझसे, और इसीलिए ही आप अब ज़्यादा वक्त मेरे साथ नहीं बिताते, आप अब मुझसे प्यार भी नहीं करते। धृति की बातें सुनकर अर्णव के चेहरे पर गंभीर भाव उभर आए। उसने धृति के नाराज़गी भरे चेहरे को अपनी हथेलियों में भर लिया और उसकी निगाहों में झांकते हुए संजीदगी से बोला, ऐसा नहीं है मेरी जान, मैं तुमसे नहीं अपनी इस सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। मैं भी तुम्हारे और हमारे बच्चे के साथ वक्त बिताना चाहता हूँ, पर मैं अभी काम में इतना उलझा हुआ हूँ कि चाहकर भी वक्त नहीं निकाल पाता तुम्हारे लिए। हाँ, जब तुम कबीर से मुझे कंपेयर करके सुनाती हो तो इरिटेट हो जाता हूँ मैं, पर इसके वजह से मैं तुमसे दूर नहीं रहता, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, और तुम्हारी ही बात नहीं है, मुझे ये कंपेरिजन वाला सिस्टम ही पसंद नहीं है। और ये तुमसे किसने कह दिया कि अब मैं तुमसे प्यार नहीं करता? मुझे महसूस होता है अब आप मेरे साथ पहले जितना वक्त नहीं बिताते, हमारे बीच उतनी बातें भी नहीं होती, आप मुझ पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते, मेरा और हमारे बच्चे का ठीक से ख्याल भी नहीं रखते। अरे मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब जो बातें तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं वो तुम्हारे ज़्यादा सोचने का नतीजा है, वरना मैं तो अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। हाँ, वक्त पहले जितना नहीं दे पाता, जिसकी वजह बता चुका हूँ मैं तुम्हें। अब हम साथ में ऑफिस में काम नहीं करते और कबीर माधुरी के साथ बिजी रहता है तो मेरी जिम्मेदारियाँ भी थोड़ी बढ़ गई हैं, और तुम्हारे खाने पीने पर रोक टोक मैं तुम्हारे और हमारे बच्चे के लिए ही लगाता हूँ, ताकि तुम ये बाहर की अगड़म बगड़म चीज़ों की जगह न्यूट्रिशियस चीज़ें खाओ, जिससे तुम्हारे और हमारे बच्चे की हेल्थ पर पॉजिटिव असर पड़े। पर आप अब मुझसे प्यार भी नहीं करते, दूर दूर रहते हैं। धृति ने मुंह पिचका लिया और उदास निगाहों से उसे देखने लगी। अर्णव की उसकी बातें सुनकर अब उसकी मासूमियत पर सिर्फ और सिर्फ प्यार आ रहा था और लबों पर गहरी मुस्कान उभर आई थी। ओ मेरी जान, मैं अब भी तुमसे बहुत 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 से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, बस थोड़ी दूरी बनाकर रखता हूँ ताकि मेरे वजह से तुम्हें या हमारे बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। जानती तो हो कितना शरारती है मेरा मन तुम्हें लेकर, तुम्हारे करीब आता हूँ तो दिल शरारत करने को मचल उठता है और फिर मेरे लिए खुद को संभाल पाना मुश्किल हो जाता है, बस इसीलिए थोड़ा अलर्ट रहता हूँ। पर प्यार अब भी बेइंतहा करता हूँ तुमसे, और हमारे बच्चे से भी बहुत प्यार करता हूँ, और जो भी कर रहा हूँ तुम दोनों के लिए ही कर रहा हूँ, पर हमें तो बस आपका थोड़ा सा वक्त और प्यार चाहिए, वो भी हमें नहीं मिलता। धृति के चेहरे पर उदासी भरे भाव उभर आए। यहाँ मेरी गलती है और तुम्हारी शिकायत नाराज़गी सब सही है, मैं तुम्हें और हमारे बच्चे को वो वक्त और अटेंशन नहीं दे पाता जो मुझे देना चाहिए और मैं देना चाहता हूँ, पर बस कुछ दिनों की बात है, एक बार डिज़ाइंस फाइनल होकर बनने के लिए फैक्ट्री में चले जाएं, फिर काम का लोड कम हो जाएगा और मैं तुम्हारे और हमारे बच्चे की सारी नाराज़गी दूर कर दूंगा। तब तक के लिए मैं शाम को थोड़ा जल्दी आ जाया करूँगा और हम दोनों एक साथ वक्त बिताएंगे। तुम घर में रहते रहते बोर जो गई होगी तो मैं तुम्हें बाहर लेकर चलूंगा और कभी कभी खाने को लेकर तुम्हारी फरमाइश भी मान लूंगा, ओके? अर्णव की बातें सुनकर धृति ने सहमति में सर हिला दिया। तो आप अभी मुझे चाट पापड़ी खिलाने लेकर चलेंगे ना? धृति ने जुगनुओं से चमकती आंखों से बड़ी ही उम्मीद से उसे देखा और अब की बार अर्णव ने उसकी इस चाहत को मुस्कुराकर स्वीकार कर लिया। धृति का चेहरा खुशी से खिल उठा और चहकते हुए वो अर्णव के सीने से लग गई। अर्णव ने भी उसे अपनी बाहों में भरते हुए उसके सर को प्यार से चूम लिया। अर्णव जी, आज मैंने कुश से बात की, वो मुझसे कह रहा था कि मैं उसको एक बहन ला दूं। धृति और अर्णव दोनों इस वक्त कार में थे। अर्णव के कानों में धृति के शब्द पड़े तो वो निगाहें घुमाकर उसे देखने लगा और लबों पर कातिलाना मुस्कान बिखर गई। अरे वाह, चलो अब कुश भी मेरी टीम में शामिल हो गया है, मुझे मेरी क्यूट लिटिल डॉल चाहिए, बिल्कुल तुम्हारी जैसी, और कुश को भी बहन चाहिए। अपनी डॉल का जिक्र करते हुए अर्णव की खुशी देखने लायक थी। आपको भी बेटी चाहिए? धृति ने आंखें बड़ी बड़ी करते हुए उससे सवाल किया, जिस पर अर्णव ने सहजता से मुस्कुराते हुए हामी भर दी। ख्वाहिश तो मेरी यही है कि हमारी एक छोटी सी प्यारी सी क्यूट और मासूम सी बेटी हो, बिल्कुल तुम्हारे जैसी। पर मैं तुम पर किसी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं डालने चाहता, तो ये बिल्कुल मत सोचना कि अगर बेटी की जगह बेटा हुआ तो मैं किसी भी तरह से निराश हो जाऊंगा या मुझे उतनी खुशी नहीं होगी। ये हमारा फर्स्ट बेबी है, जो बेटी हो या बेटा बहुत खास है मेरे लिए, और मुझे अपने बच्चे को पहली बार अपनी बाहों में थामने की जो खुशी होगी वो दोनों में बराबर ही होगा। मैं हमारे बेबी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ, और बेटा हो या बेटी दोनों का मैं अपनी दोनों बाहों को फैलाकर खुले दिल से स्वागत करूंगा, तो इस बारे में ज्यादा सोचकर स्ट्रेस मत लेने लगना, ओके? अर्णव ने बड़े ही प्यार से उसे समझाया। धृति ने भी उसकी बात सुनकर हामी भर दी। अर्णव ने पल भर ठहरते हुए अगला सवाल किया, वैसे तुम क्या चाहती हो? मतलब जैसे हर माँ बाप की एक ख्वाहिश होती है बेटे या बेटी की, मुझे है बेटी की, तुम्हें किसकी ख्वाहिश है?
मुझे किसी की भी नहीं। मैंने पढ़ा था कि माँ जो सोचती है, जो महसूस करती है, सबका असर बच्चे पर पड़ता है, इसीलिए मैंने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे बेटा चाहिए या बेटी। मैंने बस हेल्दी बेबी की कामना की है और चाहा है कि उसके आने से हमारा रिश्ता और भी गहरा और मजबूत हो जाए, वो अपने साथ हमारी जिंदगी में खुशियां लेकर आए, हम साथ मिलकर प्यार से उसकी परवरिश करें। उसके बाद बेटा हो या बेटी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों होंगे तो हमारे ही बच्चे, जन्म तो उन्हें मैं ही दूंगी, वो आपके ही अंश होंगे, वो हमारी मोहब्बत और रिश्ते की अनमोल निशानी होंगे। मेरा प्यार दोनों के लिए बराबर ही रहेगा, और मेरी गोद में बेटा आए या बेटी, मुझे उतनी ही खुशी महसूस होगी जितनी किसी भी माँ को अपनी पहली औलाद को पहली बार अपनी गोद में लेकर होती है। दैट्स ग्रेट। अर्णव ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। धृति भी बदले में मुस्कुरा दी और अपने बढ़े हुए पेट पर हथेली रखकर अपने बच्चे को महसूस करने लगी, जो खुद में ही एक बेहद खास एहसास था। कुछ देर में वो बीच पहुंचे। अर्णव धृति की हथेली थामे समुद्र किनारे की भीगी रेत पर चलते हुए, धीरे धीरे चलते हुए अर्णव उसे बातें करने लगा। ठंडी पवन उन्हें छूकर गुजर रही थी और आती जाती लहरें उनके कदमों को चूमने को मचल उठती थीं। खुले आकाश के नीचे यूं अर्णव की बाह थामे उसके कदम से कदम मिलाते हुए बातें करना धृति के मन को मीठी मीठी प्यार भरी अनुभूतियों से भर गया। बहुत वक्त बाद वो सुकून भरे कुछ लम्हे उसके साथ बिता रही थी और उनके बीच कुछ प्यार भरी बातें हो रही थीं।
कुछ वक्त गुजरा, शाम गहराने लगी, सूरज समुद्र की लहरों की गहराइयों में समा गया। बाहर अंधेरा होने लगा तो अर्णव धृति को लेकर साइड में लगे स्टॉल्स के पास चला आया। चाट पापड़ी देखते ही धृति की आंखें चमक उठी थीं और लबों पर ठहरी मुस्कान गहरा रही थी। कितनी खुश लग रही थी वो इस वक्त, और तीखी चटपटी मज़ेदार चाट पापड़ी खाते हुए उसके नूरानी चेहरे पर संतुष्टि के भाव मौजूद थे, जिसने अर्णव को एहसास करवा दिया था कि कभी कभी हेल्थ के साथ थोड़ी लापरवाही करके नरमी दिखाते हुए दिल की इच्छा पूरी करने में भी कुछ बुराई नहीं है। अगर उसके बदले धृति के चेहरे पर उसे ये खुशी देखने को मिलती है तो ये घाटे का सौदा तो बिल्कुल नहीं है उसके लिए। यहाँ से दोनों घर के लिए निकल गए। सारे रास्ते धृति आकाश में स्वच्छंद उड़ने वाले पंछी जैसे चहकती रही, उससे बातें करती रही और अर्णव उसे देखकर मुस्कुराता रहा। घर पर जब सबने दोनों को साथ में मुस्कुराते हुए अंदर आते देखा तो वो भी मुस्कुरा दिए। कहने को तो दादा दादी मिस्टर एंड मिसेज रायजादा के साथ, शीला माधुरी सब उसके साथ ही रहते थे सारा दिन, पर अर्णव के साथ से जो खुशी धृति के चेहरे पर झलकती थी वो अलग थी। सबकी मौजूदगी में भी उसे उसकी कमी शिद्दत से खलती थी, जिसका एहसास सबको था। आज दोनों को साथ में खुश देखकर उनके लबों पर मुस्कान ठहर गई थी। रात का वक्त था। कबीर वॉशरूम से बाहर निकला तो उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी माधुरी पर पड़ी, जिसने अपने नाइट सूट के टी शर्ट को आगे से अपने पेट से बिल्कुल चिपकाते हुए पीछे करके पकड़ा हुआ था और एक टक मिरर में अपने पेट को देख रही थी। ये देखकर कबीर की भौहें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गईं और चेहरे पर उलझन भरे भाव वो भराए। मधु, इतने गौर से क्या देख रही हो तुम? कबीर ने उसकी ओर कदम बढ़ाते हुए सवाल किया, पर माधुरी अब भी अपने पेट को ही देखे जा रही थी। देख रही हूँ, 3 महीने से ज्यादा हो गया है पर अभी तक मेरा पेट जरा सा भी बाहर नहीं निकला है, उसके अल्फाजों में उलझन झलक रही थी। इतना कहकर उसने निगाहें कबीर की ओर घुमाते हुए विचलित निगाहों से उसे देखते हुए सवाल किया, कबीर मैं पक्का से प्रेग्नेंट होना, कहीं रिपोर्ट गलत तो नहीं आ गई? ये शक तुम्हारे मन में कहाँ से आ गया? कबीर ने उसके सामने ठहरते हुए सवाल किया, जबकि कुछ कुछ अंदाज़ा था उसे कि माधुरी आखिर ऐसा कह क्यों रही है। कबीर का सवाल सुनकर माधुरी निगाहें झुकाकर अपने पेट को देखने लगी। देखो ना, 3 महीने हो गए पर मेरा पेट जरा भी बाहर नहीं आया, मुझे तो खुद में कोई बदलाव ही नज़र नहीं आ रहा, जबकि धृति के टाइम पर उसका पेट थोड़ा बाहर आ गया था और ध्यान से देखने पर पता भी लगता था। तो भाभी और तुम अलग अलग इंसान नहीं हो? हर चीज़ का अलग इंसान पर अलग तरह से असर होता है। तुम्हें याद नहीं, भाभी को शुरुआती टाइम में मॉर्निंग सिकनेस होती थी, स्मेल से कितनी प्रॉब्लम होती थी उन्हें,
प्रेगनेंसी के शुरुआती वक्त में उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, पर तुम्हारे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगर हम टेस्ट नहीं करवाते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि तुम प्रेग्नेंट भी हो। इसलिए अपने केस को भाभी से कंपेयर मत करो। टेस्ट करवाए हैं ना हमने, अब की बार तो सोनोग्राफी भी करवाई थी, उसमें हमारे बच्चे को भी देखा था। अभी बस 3 ही महीने हुए हैं और बेबी बहुत छोटा है, जब थोड़ा बड़ा होगा तो पेट भी दिखने लगेगा, तुम सब्र रखो। कबीर ने बहुत ही प्यार और संजीदगी से उसे अपनी बात समझाई। लॉजिक था बातों में तो माधुरी ने भी हामी भर दी। कबीर ने उसकी हथेली थामी और उसे लेकर बेड की तरफ बढ़ गया। चलो बहुत घूर लिया तुमने अपने पेट को, टेंशन भी बहुत ले ली, अब आराम से रिलैक्स होकर यहाँ बैठो। उसे बेड पर बिठाने के बाद कबीर ने उसकी कलाई छोड़ी। अगले ही पल माधुरी ने उसकी हथेली को थाम लिया, जैसे उसे जाने से रोक रही हो। कबीर की सवालिया निगाहें माधुरी की ओर उठ गईं। बैठो यहाँ मेरे पास, कुछ बात करनी है मुझे तुमसे। कबीर उसकी बात मानकर उसके पास ही बैठ गया। माधुरी ने पल भर ठहरते हुए गंभीरता से कहना शुरू किया। कबीर, मैं सोच रही थी कि वापस से ऑफिस जाना शुरू कर दूं। देखो अभी तो बस 3 महीने ही हुए हैं, 6-7 महीने तक तो लड़कियां आराम से काम कर लेती हैं, धृति ने भी किया था, और ऑफिस में तो मेरे साथ ही रहोगे तो चिंता वाली भी कोई बात नहीं है। वैसे भी घर में खाली बैठे बैठे मैं बोर हो जाती हूँ। मैं यहाँ रहती हूँ तो तुम्हारा वहाँ ऑफिस से मन नहीं लगता, और मौका मिलते ही तुम मेरे पास आ जाते हैं। ऐसे में अर्णव का काम और उसकी जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। अर्णव धृति को वो वक्त और अटेंशन नहीं दे पाता जिसकी धृति को ज़रूरत है। ऐसे में उनके बीच दूरियाँ बढ़ गई हैं, लड़ाइयाँ होने लगी हैं। शादी के वक्त भी हमारे वजह से अर्णव और धृति 1 महीने बाद हनीमून पर गए थे, और अभी भी हमारे कारण वो उनकी लाइफ के इतने खास पलों को खुलकर महसूस तक नहीं कर पा रहे। धृति को 9वां महीना चल रहा है, उसे अभी सबसे ज़्यादा अर्णव की ज़रूरत है, और उसका खुश रहना बहुत ज़रूरी है। इन सब बातों के बारे में सोचकर मैंने फिर से ऑफिस ज्वाइन करने का फैसला किया है। मैं जानती हूँ कि तुम ऐसा नहीं चाहते, तुम मुझे स्ट्रेस से दूर रखना चाहते हैं, मुझे प्रॉपर आराम देना चाहते हो, पर मुझे खाली बैठने से उलझन होने लगती है, काम में मन लगता है मेरा, और तुम्हारे साथ भी मुझे ज़्यादा वक्त मिल जाता है, इसलिए मैं वापस तुम्हारे साथ ऑफिस जाना चाहती हूँ। तुम्हें मेरे इस फैसले से कोई ऐतराज़ तो नहीं? माधुरी ने अपने फैसले के पीछे के हर पहलू पर पूरा जोर दिया था। कबीर जहाँ खामोशी से उसकी बातें सुन रहा था, उसके लबों पर गर्व भरी मुस्कान उभर आई थी। नहीं, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं, तुम मेरे साथ रहोगी, मैं तुम्हारा ख्याल रख पाऊंगा, इससे अच्छी बात भला मेरे लिए क्या होगी। पर तुम काम का ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लोगी, वर्कलोड लेकर खुद को थकाओगी भी नहीं, और वहाँ काम के बीच आराम भी करोगी। अगर तुम ये बातें मानोगी तो मैं तुम्हें अपने साथ ऑफिस ले चलूंगा। कबीर बड़ी ही आसानी से उसकी बात मान गया था। ये देखकर माधुरी कुछ हैरान भी हुई और उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए झट से हामी भी भर दी। कबीर ने आगे बढ़कर प्यार से उसके माथे को चूमते हुए उसे अपने सीने से लगा लिया। माधुरी मुस्कुराते हुए उसकी बाहों के घेरे में सिमट गई। टू बी कंटिन्यूड।